Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitasya Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavane Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Panchakalpataru Bhayasya Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavane Bhyo Vaishnave Bho Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Vishnupad Paramahamsa Parivrajika Saraswata Sri Srimad Avaicharana Aravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namachar Srila Haridas Thakur Ki Tai Gaura Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 7 श्लोक संख्या 6 ना 6 है। अथानिक सुख्य मना मनस्विने अथानिक सुख्य मना मनस्विने समागतान पूजयति ब्रजौकश समागतान पूजयति ब्रजौकश नैवाश्विनोद्वैरुदितं सुतस्य सा नैवाश्विनोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन सस्तन्नार्थी चणराबुदक क्षिपत रुदन अस्तनार्थी चरणाबुदक क्षिपत। अथानिक सुख्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति ब्रजौकश नैवाशिणद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन सस्थनार्थी चरणाउदच्छिपत। अथानिक सुख्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति ब्रजौकशः नैवाश्विनोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन अस्थनार्थी चरणाउदच्छिपत। तथा निकोशुक्य मना मनस्विनी समागतान पूजयते व्रजौकस नैवाशृणद्वैरुदितं सुतस्य सा माताजी आथानिको सुख्य मना मनस्विनी शब्दार्थ अवथानिक कौशुक्य मना माता जसोदा बच्चे का उत्थान उत्सव मनाने में अत्यधिक व्यस्त थी। मनस्विनी भोजन वस्त्र आभूषण तथा गौवें बांटने में अत्यंत उदार। समागतान एकत्र मेहमानों को पूजयति उन्हें तुष्ट करने के लिए ब्रजौकसा ब्रजवासियों को न नहीं एवा निश्चय ही अश्रृणोत सुना वही निसंदेह रुदितम रोना सुतस्या बच्चे का सा यशोदा रुदन रोना अस्तनार्थी कृष्ण जो माता के अस्तन का दूध पीना चाह रहे थे। चरणौ दीक्षिपत क्रोध के मारे अपने दोनों पांव इधर उधर उछाल रहे थे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की उत्थान उत्सव मनाने में मग्न उदार माता जसोदा मेहमानों का स्वागत करने आदर सहित उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र गौवें मालाएं और अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थीं। अतः वे बालक के रोने को नहीं सुन पाई। उस समय बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहता था, दूध पीना चाहते थे, यहाँ चाहता लिखा, चाहते होना चाहिए, माता का दूध पीना चाहते थे। अतः क्रोध में आकर वो अपने पांव ऊपर की ओर उछालने लगे, सम्मान पूर्वक होना चाहिए ना। तात्पर्य कृष्ण घरेलू छकड़े के नीचे लिटाए गए थे, किंतु यह छकड़ा वास्तव में शक्टासुर का अन्य रूप था। यह असुर बालक को मारने के लिए वहां आया था। कृष्ण ने अपनी माता का स्तन पान करने के बहाने इस असुर का वध करने का अवसर प्राप्त किया। उन्हें शक्टासुर को लात मारी जिसे सारा भेद खुल जाए। यद्यपि कृष्ण की माता मेहमानों के स्वागत में लगी थीं, किंतु भगवान कृष्ण शक्टासुर को मारकर उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छकड़े के आकार वाले असुर को लात से मारा। कृष्ण की लीलाएं ऐसी ही हैं, जो अपनी माता का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे, किंतु ऐसा करते समय उन्होंने ऐसा उत्पात खड़ा कर दिया जिसे सामान्य लोग समझ नहीं सके। ये कथाएं अद्भुत एवं आनंद देने वाली हैं। जो लोग भाग्यशाली हैं वे भगवान की इन असाधारण लीलाओं को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यद्यपि अल्पज्ञ इन्हें मिथ्या कथाएं मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में भूसा भरा रहता है। बहुत अच्छा शब्द है, भूसा भरा रहता है। किंतु ये कथाएं वास्तविक हैं। ये कथाएं इतनी रोचक तथा प्रबुद्ध करने वाली हैं कि महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी को इनमें आनंद आया और उनके चरण चिन्हों में चलने वाले अन्य मुक्त पुरुष भी भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अनेक बाल लीलाएं किए। सर्वप्रथम 6 दिन के थे तो पुतना का उद्धार किए और इसके बाद सकट भंजन, इसके पहले तृणावर्त, तृणावर्त का हो गया ना, नहीं है तृणावर्त का आने वाला है, इसके बाद सकटासुर, फिर तृणावर्त, ये मल्लार्जुन उद्धार, ये गोकुल में सब लीलाएं किए भगवान। तो भगवान कृष्ण की उत्थान लीला, करवट बदलने की, बच्चे 3 महीने के हो जाते हैं तो इधर उधर करवट बदलने लगते हैं, तो इसका भी उत्सव होता है। ब्रजवासी लोग अनेक उत्सव करते हैं। आज भी गांव में भारतीय संस्कृति है कि कुछ न कुछ उत्सव लोग मनाते हैं। बच्चे के जन्म पर भी उत्सव होता है, फिर जब करवट बदलने लगता है तो माताएं माताओं को आमंत्रित करती हैं, गृहस्थों को आमंत्रित करती हैं और उत्सव मनाया जाता है। बहुत सोहर गीत गाती हैं माताएं, मांगलिक गीत गाती हैं, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया जाता है, बच्चे के स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए अनेक दान माताएं देती हैं। माता पिता बच्चे के लिए दान देते हैं, गौ दान करना, भूमि दान करना, वस्त्र भोजन आभूषण, ये दान से घर में पवित्रता होती है। दान करने से धन की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है और भजन करने से हृदय का चित्त का शुद्धि होता है, इसलिए दान करना ही चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, लोग दान करते हैं कोई भी उत्सव पर। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप करना ही चाहिए, न त्याज्यम, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, दान करना ही चाहिए। दान करना एक बहुत अच्छा प्रायश्चित है, शुद्धिकरण है, से व्यक्ति के चित्त में सुख की अनुभूति होती है देने से, किसी को देना चाहिए। नदी अपना जल का प्रवाह कभी रोकती नहीं है, वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं, दान करते हैं। वृक्ष का हर चीज दूसरे के लिए है, जो विभूति होते हैं उनका हर चीज परमार्थ के लिए होता है। वृक्ष बड़ा होता है, धूप में रहता है, अपने धूप को धारण करता है और वृक्ष तले जो जाता है उसको शीतलता प्रदान करता है। देखें ना, वृक्ष धूप को ऊपर ले लेता है और वृक्ष के तले जो जाते हैं उनको शीतलता प्रदान करता है। सर्दी में भी सहन करता है, उसका छाल है, तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, सब दूसरे के लिए न्यौछावर करता है। उसी तरह माँ यशोदा को यहाँ मनस्विनी कहा गया है, महाउदार मनस्विनी। अभ्यागंतुकों को, जो भी अभ्यागंतुक अतिथि आते थे उनको उदारता से उनका स्वागत करती थी और उनको दान देती थी, गौवें दान करती थी, गौवें, वस्त्र, आभूषण, अन्न, भोजन, ये सब दान कर रही थी। माँ यशोदा बहुत उदार थी, इसलिए माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अवथानी कौशुक्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति ब्रजऊ कसा। ब्रजऊ कसा मने ब्रजवासियों को आए देख पूजयति, उनकी पूजा करती थी, चरण वंदना करती थी। कोई भी अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो उसका पूजा करना चाहिए, कुछ नहीं तो उसका चरण वंदना करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। अपने से बड़े भी कोई मिलते हैं तो उनको नमस्कार करना चाहिए, हरे कृष्ण बोलना चाहिए, कसने का हरे कृष्ण बोलना चाहिए। अरे तो चरण लोग बोलते हैं पांव लांगी, हमारे बिहार में बोलते हैं पांव लांगी, तो पांव लांगी मोक्ष ने लोग छू कर भी कर, चरण स्पर्श करते थे। प्रणाम करना एक बहुत बड़ा विनम्रता है। प्रणाम करने से मन में जो अहंकार होता है, जो ईर्ष्या भाव होता है, दूर हो जाता है। किसी में कोई खटपट भी हो जाता है, मतभेद हो, तो प्रणाम करने से हो जाता है। प्रणाम करने से बहुत लाभ मिलता है। प्रणाम करने से चार चीज की वृद्धि होती है, चाणक्य पंडित कहते हैं। प्रणाम करने से बहुत बड़ा संकट भी टल जाता है। द्रौपदी के पतियों पर महान संकट आया था। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था, दुर्योधन ने उकसाया कि आप लड़ नहीं रहे हमारे तरफ से। ऐसा व्यंग वचन वाले, बल्कि जाओ कल पांच पांडवों को मार दूंगा, कल पांच पांडव नहीं रहेंगे, प्रतिज्ञा लिए थे। बहुत चिंता हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रात्रि में भेजा। द्रौपदी जाकर प्रणाम की, प्रणाम करने से ही सारा संकट दूर हो गया। इसलिए प्रणाम एक बहुत बड़ा ही अस्त्र है, आप सबको झुका सकते हैं प्रणाम करके। इसलिए भगवान भी कहे कि माम नमस्कार, मुझे प्रणाम तो करो। कभी कोई जाकर भगवान के सामने गुजरता है तो बोलता है आप प्रणाम क्यों नहीं किए, प्रणाम कर लो। आप प्रणाम नहीं किए, भगवान शायद मन में सोचते होंगे आप प्रणाम नहीं किए, प्रणाम करना चाहिए। इसलिए चाणक्य पंडित कहे कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पशे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम्। प्रणाम करने से चार चीज बढ़ता है, आयु विद्या जस और बल। अभिवादन शीलस्य नित्यम, नित्य रोज, वृद्धो पशे विनः, अपने से बड़े लोगों को, वृद्ध लोगों की सेवा करने से, प्रणाम करने से चार चीज बढ़ जाता है। ट्यूशन करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं लोग, ये साधारण चीज है। पढ़ने से विद्या नहीं आती है, आप किताब का कीड़ा बने रहिए, नहीं विद्या आएगी। तद विधि परिपाते न परिप्रश्न न सेवया, सेवा के द्वारा एकलव्य सेवा करके सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो भी मूर्ति सेवा किया था। एकलव्य जो है द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके, जैसे हम लोग गुरु पूजा करते हैं ना जंगल में, और उनकी सेवा करता था, गुरुपद पंकज सेवा। एकलव्य को गुरु शिष्य स्वीकार नहीं किए थे ना द्रोणाचार्य, लेकिन वो गुरु मान लिया था, गुरु मान्यता है। बाह्य एक ऋत्विक होता है, ऋत्विक बाह्य उसको यज्ञ कराते हैं, को दीक्षा संस्कार कराते हैं, लेकिन वो संस्कार नहीं हुआ था, गुरु ने स्वीकार भी नहीं किया था, लेकिन वो गुरु मान लिया था। मान्यता ही सबसे बड़ी बात है, किसी को गुरु मन में मान लिया कि हमारे गुरु हैं, तो उस दिन से गुरु हो। कोई स्त्री, कोई लड़की किसी को अपना पति मान लेती है मन से, सावित्री ने सत्यवान को अपना पति मान लिया था कि यही हमारा पति होगा। बाद में नारद जी कहे कि इसकी तो अकाल मृत्यु है, पिताजी कहे कि सावित्री तुम दूसरा पति चयन करो, सावित्री ने कहा मैंने मान लिया पति तो वही हमारा पति होगा। मान्यता बहुत बड़ी बात होती है, बहुत दीक्षा लेकर भी गुरु को नहीं मानते हैं तो क्या फायदा है, मन से स्वीकार कर लिया कि हमारे गुरु हैं, वही असली दीक्षा है, मन से ही ये होता है, मन मना भव, भगवान भी ने बोले मन जहाँ जुड़ता है जिस गुरु में, भगवान में, इष्ट में, वही वही दीक्षा है। तो एकलव्य जो है द्रोणाचार्य को गुरु मानकर उनकी सेवा करता था, मूर्ति विग्रह, इसलिए अर्चा विग्रह सेवा की महिमा है शास्त्र में। और सेवा से मूर्ति ही बोलती थी, द्रोणाचार्य की मूर्ति बोलती थी, पूछता था कि ब्रह्मास्त्र की विद्या क्या है, एक अग्नि क्या है, वो सब पूछता, वो मूर्ति बोलने लगी उसकी भक्ति से। द्रोणाचार्य की मूर्ति बोलती थी और सब विद्या प्राप्त कर लिया। अर्चा विग्रह सेवा की इसीलिए प्रधानता है। तो उस उत्थान उत्सव में माँ जशोदा अतिथियों की सेवा करती थी, समागतान पूजयति ब्रजौ कसः, ब्रजवासियों की पूजा करती थी। गृहस्थ का कर्तव्य है कि जो भी अतिथि आते हैं उनको भोजन वस्त्र देना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दान देने से धन नहीं घटता है, पेड़ फल देता है फिर फल आता है, नदी का पानी बहता ही है। पिबंति नद्यः स्वमेव नाभ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। सुभाषितानी में कहा गया कि पिबंति नद्यः स्वमेव नाभ, नदी अपना पानी कहाँ पीती है, नदियां अपना जल नहीं पीती हैं, न संग्रह करती हैं, अति संग्रह न कर्तव्य बहाती हैं। न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं, दूसरे के लिए दे देते हैं। अब वृक्ष अपना फल रखे रहे डाल में पकड़ करके तो शाखाएं सड़ने लगेंगी, फल सड़ने लगा, शाखाएं सड़ने लगी, ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। ऋतु के बाद भी फल डाली में ऐसे लगा रहे तो फल सड़कर डाली को भी सड़ा देता है, इसलिए दान करना चाहिए। न खादंति फलानि वृक्षा, नादंति सस्यम खलुवारी बाहा। बादल वर्षा करता है, अन्न होता है, थोड़े बादल खाता है दूसरे के लिए। खलुवारी बाहा परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकार। तो माँ जशोदा इस तरह से ब्रजवासियों के पूजन में, उनके सेवा में, उनको दान करने में, उनको माला पहनाने में व्यस्त थी और बच्चे के रोने की आवाज को नहीं सुन पाई। उत्सव में, घर में जब उत्सव होता है तो घर की स्त्रियां व्यस्त हो जाती हैं, सब सामाने करने में, वो खिलाने में, करने में, ज्यादा स्त्रियों का काम होता है उत्सव में, भोजन बनाना, लोगों को खिलाना, को दान देना। तो माँ जशोदा इतना व्यस्त थी कि बच्चे के नैवा क्षीणोद्वय रुदितम सुतस्य सा, वह बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुन पाई। कृष्ण को कोने में, उनका ही उत्सव हो रहा है, उनको कोने में एक बैलगाड़ी के नीचे सुलाया गया था। जेकरे बिया हो करे खड़ा बरी, भोजपुरी में कहावत है। जिसका विवाह है और उसी को एक थोड़ा सा पकौड़ा आधा दे रहे हैं। को भोजपुरी में कहावत है कि जेकरे बिया हो करे खड़ा बरी, बरी मने बड़ा, और थोड़ा दे रहे हैं उसको, उसको अच्छा से प्लेट, उसका विवाह है, जिसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है, उसको कोने में एकदम उपेक्षित जैसा रखा गया, वो भी बैलगाड़ी के नीचे, वो भी गादा सोफा सेट नहीं था। तो कृष्ण देखे कि मेरे ओर कोई देखे ही नहीं रहा है, जिसका बर्थडे है उसको ना सब लोग मिलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, उसको उपहार लोग देते हैं, बोले मेरे लिए उत्सव हो रहा है और मैं एकदम कोने में हूँ, कोई देख नहीं रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण सबका, सबकी दृष्टि अपने ओर लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा धक्का मारा कि गाड़ी जो है पैर से ऐसा मारे कि पलटी हो गया, चूर चूर हो गया, ऐसा किए कि सबका ध्यान अब कृष्ण की ओर आ गया। भगवान सोचे कि क्या बात है कि माँ यशोदा भी नहीं देख रही है, मेरे लिए ही उत्सव हो रहा है, वो अपने काम में बिजी है, मेहमानों के लिए सब कर रही है। वास्तव में कृष्ण को केंद्र में होना चाहिए ना, कृष्ण के लिए उत्सव हो रहा है, उनको केंद्र में होना चाहिए, उनको बीच में मंडप में होना चाहिए कि जो लोग आए सो बच्चे को देखें। इसलिए भगवान ने रोना चालू किया और दूध पीने के बहाने ही उस शकटासुर शकट मामा का उद्धार किए। शकट जो है वो भूत की तरह था, भूत प्रेत का स्थूल देह नहीं होता है। तो भूत जो है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, कभी कभी किसी के शरीर में भूत का आवेश हो जाता है तो बड़बड़ करने लगता है, भागने लगता है। भूत दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, पेड़ में भी प्रवेश करता है, कभी कभी किसी पेड़ में भूत प्रेत का वास होता है, उसी शरीर में रह करके आश्रय लेता है। तो शकट जो है वो भूत, शकट भूत जो है गाड़ी के अंदर आश्रय लिया था, गाड़ी के शेप में ही वो निवास किया था। और वो बच्चे को मारने के लिए वहां बैठा था। जैसे कभी कभी देखा जाता है पेड़ पर भी, जैसे इस पेड़ में कल बता रहे थे ना प्रभु जी, जीवन के नाम भूल जाता हूं मैं, जीवन रूप प्रभु है? हंस रूप जीवन प्रभु कल बता रहे थे कि 7 बजे पेड़ जोर जोर से हिल रहा था, ये और हवा भी नहीं थी और बगल वाला पेड़ नहीं हिल रहा था, तो 2-3 लोग देखे वो दृश्य को 7 बजे। ये पेड़ नहीं हिल रहा था, ना हवा भी नहीं थी, ये बेल का पेड़ खूब जोर जोर से हिल रहा था, पत्ते गिर रहे थे। तो कहे कि कोई भक्त, कोई वैष्णव आ गए थे उसमें, कोई वैष्णव या कोई देव अंश होगा, कोई आए होंगे। ऐसा हम लोग भी देखे हैं, और हम अपने गांव की तरफ देखे थे, गांव से दूर एक आम का पेड़ था, शाम का समय था और आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, यद्यपि हवा नहीं था, खूब जोर जोर से हिलने लगा। तो वहां एक प्रेत रहता था, तो कई लोगों का ऐसा उधर दिखाई पड़ता था। तो उसी तरह वो भूत शकट जो है वो गाड़ी के शेप में ही प्रवेश करके रह रहा था, या गाड़ी का आकार लिया था। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमने यह सुना है कि लोगों को भूत प्रेत सताते हैं, स्थूल शरीर प्राप्त न होने से भूत स्थूल शरीर को ढूंढकर उसी में आडा जमाता है। शकटासुर ऐसा ही भूत था जिसने छकड़े में शरण ले रखी थी और कृष्ण को क्षति पहुंचाने की ताक में था। शकटासुर ऐसा ही भूत था जिसने छकड़े में शरण ले रखी थी। तो बच्चे, भगवान श्री कृष्ण शकटासुर को मारना चाहते थे और एक तरह से सूचना दे रहे थे, जब बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, जब बच्चों को भूख लगती है तो संकेत करते हैं, रोने लगते हैं, तो माताएं आती हैं। बच्चे रोने लगते हैं तो मतलब कुछ या तो भूखा होगा या कुछ शारीरिक पीड़ा होगा, बच्चे के शरीर में कोई बीमारी भी आती है तो रोना चालू करता है। तो माँ उसको दूध पिलाने के लिए कोशिश, जब दूध नहीं पीता है तो माता समझती कोई इसको शरीर में कोई बीमारी है, अथवा दूध पीने के लिए भी बच्चे रोते हैं, जब भूख लगती है तो बच्चे रोना प्रारंभ करते हैं। तो कृष्ण जोर जोर से रो रहे थे, अपने पैर को उछाल रहे थे, तो पैर को उछाल करके गाड़ी को धक्का मारे तो गाड़ी जो है गिर गया। उन्होंने शकटासुर को लात मारी जिससे सारा भेद खुल जाए, यद्यपि कृष्ण की माता मेहमानों के स्वागत में लगी थी, किंतु भगवान कृष्ण शक्टासुर को मारकर उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छकड़े के आकार वाले असुर को लात से मारा। कृष्ण की लीलाएं ऐसी ही हैं, अपनी माता का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे। कृष्ण इस तरह से लात जब मारे तो छोटे बच्चे, अभी बहुत कम समय हुआ था, और छोटे छोटे पांव और पांव भी बहुत कोमल कोमल थे, कोपल, जैसे वृक्ष में कोपलें, नए नए पत्तियां आती हैं, आम के पेड़ में हम लोग देखे हैं नए नए पत्ते निकलते हैं, उसको किसले बोलते हैं, लाल लाल होता है, बहुत कोमल। तो भगवान के चरण भी किसलय वृक्ष के कपोल पत्तियों की तरह कोमल थे, उन्हीं कोमल चरणों से उस शकट का भंजन कर दिए, तोड़ दिए, ऐसे लात मारे थे। भगवान भक्तों के लिए कमल से भी कोमल हैं और असुरों के लिए वज्र के समान कठोर हैं। वज्रादपि कठोराणी अमृदुनी कुसुमा कर, वही जो छोटे सलोने बहुत मासूम बच्चा, यद्यपि अभी करवट भी नहीं बदल रहा है, वो अपने पांव से गाड़ी को मारा और गाड़ी भरभरा कर गिर गया। भगवान असुरों के लिए वज्र के समान है, वज्रादपि कठोराणी, और भक्तों के लिए पुष्प के समान कोमल है। जैसे हिरण्यकश्यपु के लिए उनका हाथ जो है वज्र के समान हो गया, तवकर कमल बरे नख मद्भुत श्रृंग, दलिता हिरण्यकश्यपु तन भृंग, केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश। तवकर कमल बरे, भगवान का हस्त कमल के समान सुंदर है, तवकर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंग, अद्भुत उनके नख जो है, नख श्रृंग अद्भुत है। दलिता हिरण्यकश्यपु तन भृंग, जो हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को अपने नख से सिर दिए, और वही करांबुज से प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिए। ये कहीं हाथ हिरण्यकश्यपु को के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिए और उसी हस्त से प्रहलाद महाराज को शीतलता प्रदान किए, आशीर्वाद दिए। तो भगवान के एक इसी आंख से असुरों को देखते हैं तो प्रलय हो जाता है, और उसी नेत्र से देखते हैं तो भक्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान दृष्टि से सृजन करते हैं और दृष्टि से ही प्रलय करते हैं। महाप्रलय के समय दृष्टि निक्षेप करते हैं और सृजन के समय भी दृष्टि निक्षेप करते हैं। जैसे भगवान हिंद महासागर के ऊपर देख दिए तो उबलने लगा था, दृष्टि से केवल देख दिए, हिंद महासागर पर ऐसे दृष्टि किए तो समुद्र उबल रहा था, और उसी दृष्टि से भक्तों को शीतलता प्रदान भी करते हैं। भगवान के हर अंग में अनेक कार्य करने की वृत्ति, सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, अंगानि जस सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, उसी चरण से भगवान शक्टासुर का वध कर दिए, और उसी छोटे छोटे चरणों से माँ यशोदा के गोद में माँ को आनंद प्रदान करते हैं। इतने कोमल कोमल चरण हैं, भगवान के चरण इतने कोमल थे कि थोड़ा स्पर्श करने से भी लाल लाल हो जाता था। यहाँ तक कि वर्णन है कि जैसे विष्णु के चरणों को लक्ष्मी जी दबाती हैं, या दबा रही ना लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का हस्त कमल भी बहुत कोमल है, लक्ष्मी जी का भी हाथ बहुत कोमल है, कर कमल, कमला के कर कमल से भगवान का चरण कमल जब स्पंदित होता है तो उसको भी सहन नहीं कर पाता है, लाल लाल हो जाता है। और ज्यादा मल शरीर लाल हो जाता है, पीठ को भी रगड़ दीजिए तो लाल लाल हो जाते हैं। भगवान के चरण इतने कोमल हैं, इसलिए ब्रजवासी लोग माँ जसोदा ये लोग विश्वास नहीं किए बच्चों के कहने पर। बच्चे कहे कि ये बच्चा ही पैर से मार दिया, गाड़ी गिर गई। वह तो ऐसा नहीं हो सकता है। सब लोग जब गाड़ी गिर गई, सारे उसके ऊपर साजो सामान गिर गए, बिखर गए, तो सब लोग भाग कर रहे क्या हो गया, ये कैसे हो गया, न हवा है न भूकंप है, कैसे गिर गया। सबको बड़ा कौतूहल हो कि गाड़ी गिरा कैसे। तो वहां बच्चे कहे कि ये बच्चे ने ही पांव से मार दिया। तो लोग कहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इसका पांव भी छोटा है, ये कैसे मार सकता है। बच्चे कहे कि नहीं, यही किया है। उनके लिए गाड़ी उलटना कौन सी बड़ी बात है, वामन अवतार में पूरे ब्रह्मांड को भेद दिए। भगवान वामन अवतार में से ब्रह्मांड को भेद करके बिरजा में प्रवेश उनका चरण कर गया, इतना बड़ा पांव बढ़ा दिए। तो गाड़ी क्या बात है, गाड़ी क्या है उनके सामने। भगवान वे भगवान की इन असाधारण लीलाओं को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यद्यपि अल्पज्ञ इन्हें मिथ्या कथाएं मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में भूसा भरा रहता है। जो अल्पज्ञ लोग हैं भगवान की इन लीलाओं को बोलते हैं कि ये काल्पनिक है। चलो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनकी बुद्धि में भूसा भरा रहता है, वो नहीं समझ पाते हैं। भगवान की लीलाएं जो है ऐसी ही है, अकल्पनीय है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम कल्पना से परे है, इनकंसेबल है कि एक कैसे बच्चा जो है पांव से गाड़ी को गिरा सकता है। पहलवान भी नहीं गिरा सकता है, पहलवान आदमी भी होगा तब पांव मारेगा तब गाड़ी पलटी नहीं होगा। लेकिन बच्चा कैसे कर सकता, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन सामान्य लोग इसको काल्पनिक मानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये कथाएं इतनी रोचक तथा प्रबुद्ध हैं, प्रबुद्ध करने वाली हैं कि महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े विद्वान और परीक्षित महाराज भी, ये लोग इन कथाओं में आनंद पाते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग इन कथाओं को सुनकर उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। इनमें आनंद आया और इनके चरण चिन्हों में चलने वाले अन्य मुक्त पुरुष भी भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। क्यों, जानते हैं कि भगवान के लिए भगवान सुई के छेद में भी हाथी निकाल सकते हैं, एक सूक्ष्म बीज में भी विशाल वृक्ष को सजाकर रख सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकते हैं। एक बीज, एक पीपल के फल में कितना बीज रखते हैं और उस बीज में कितने वृक्ष रखे हैं, भगवान के लिए कोई भी वस्तु निर्मित करना, उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में रख सकते हैं और बड़ा से बड़ा रूप में भी रख सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त लोग भगवान की लीलाओं में आनंद प्रदान करते, आनंद लेते हैं, उसमें रमण करते हैं। ऐसे महान भक्त लोग शंका नहीं करते हैं, उसमें रमण करते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतस माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, उसका बार बार कथन करते हैं। यानी कि एक बार कह दिया तो हो गया, कथयंतस माम नित्यम रोज कहते हैं आपस में, तुष्यंति कथयंति कहते हैं, रमन्ति तुष्यंति उसी में संतुष्ट रहते हैं। कथयन तस्य माम नित्यम, नित्य भगवान की लीलाओं को आपस में चर्चा करते हैं। कथयन तस्य माम नित्यम मतुष्यंती अभी रमंती, उसी में हमेशा रमण करते हैं। तो जो भगवान की बाल लीलाएं हैं, बाल चरितानी, माँ जसोदा भी उन बाल लीलाओं को गाती थी। प्रभुपाद लिखते हैं माँ जसोदा भी अपने पुत्र के इन लीलाओं को पद में बना करके गाती थी। जैसे जब दधि मंथन कर रही थी माँ जसोदा, तो कृष्ण के बाल लीलाओं को गा भी रही थी। प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत ऐसे कवि हैं, पेशेवर कवि हैं, जो भगवान की लीलाओं को कविता में बनाकर गाते हैं। तो माँ जसोदा भी अपने कृष्ण के इन लीलाओं को गाती थी, बाल लीलाओं को, क्योंकि कृष्ण कोई सामान्य बच्चे नहीं थे। एकदा गृहदा शिशु जसोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर निकताशु निर्मिमंथा स्वयं दधि। स्वयं दधि मथने जा रही थी और अन्य कामों में दासियों को लगा करके बहुत सुंदर वस्त्र पहन करके स्वयं उस दिन दधि मंथन के आगे लीला होगी। निर्मिमंथा स्वयं दधि, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इससे भाव यह उद्दीप्त होता है कि माँ जसोदा रोज दही नहीं मंथन करती थी, दासियां मथती थी, लेकिन एकदा गृहदास शिशु, एक दिन गृहदास शिशु गृह दासियों को, नौकरानियों को अन्य कामों में कर्मांतर नियुक्ताशु, अन्य कार्यों में नियुक्त करके निर्ममंथा स्वयं दधि मथने लगी। क्यों? कि उलाहना आता था कि हमारे घर में माखन चोरी किया, ये किया, तो माँ ने सोचा शायद हमारे घर का माखन अच्छा नहीं होता है, मैं आज दही मथूंगी। तो प्लानिंग करके माँ एक दिन पहले पद्मगंधा गाय के दूध से दही बनाई, आश्वम दधि मंथन करके माखन तैयार करने लगी कि कृष्ण अन्य घरों में नहीं जाएंगे चोरी करने। तो दही मंथन कर रही थी तो अपने कृष्ण के लीलाओं को गान भी कर रही थी। तो यहाँ पर भगवान की इन लीलाओं को मुक्त पुरुष, सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त पुरुष लोग गाते हैं और उसी में आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान की जो औथानिक उत्थान लीला है, इसको माँ जसोदा ब्रजवासियों के साथ मना रही थी और बहुत उदार भाव से सबका सेवा कर रही थी, उनको भोजन वस्त्र आभूषण और माला से स्वागत कर रही थी, और उसमें इतना व्यस्त हो गई कि अपने बच्चे की ओर ध्यान नहीं दे पाई, भूल गई कि बच्चे को भी दूध पिलाना है, ये करना है, काम में इतना व्यस्तता हो गई कि भूल गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये सकट भंजन लीला किए, ये सारे लोग अब सबका ध्यान कृष्ण की ओर आ गया। कृष्ण चाहते हैं कि लोग मुझे देखें, मेरे विषय में वार्ता करें, भगवान भी चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भो मद भक्तो मद्याजी, मेरी पूजा करो। माँ जसोदा यद्यपि ब्रजवासियों के पूजा में बहुत तन्मय थी, अब भगवान स्वयं आए हैं तो सब ब्रजवासियों को भी भगवान की पूजा करनी चाहिए ना, है कि नहीं? भगवान जो सारे ब्रह्मांड के, अनेक ब्रह्मांड के पति हैं, और उनको भूल करके ब्रजवासियों की सेवा पूजा कर रही थी, आदर दे रही थी, उनको दान दे रही थी, ये भी अच्छा है, ये भी सही है कि गृहस्थ को ये करना चाहिए, अभ्यागत की सेवा करनी चाहिए। किसी गृहस्थ के घर कोई आया और बिना जल पान किए बिना खाए चला गया और संतुष्ट होकर अगर चला गया तो वो बहुत खराब माना जाता है। किसी गृहस्थ के घर कोई आया मेहमान असंतुष्ट होकर चला गया, कोई अपेक्षा से आया कुछ लेने के लिए आया, असंतुष्ट नहीं हुआ तो उसको, उस पर राहु का असर आ जाता है, राहु केतु का प्रभाव आ जाता है उसके ऊपर। अगर कोई आपके घर में आया या मंदिर में भी आया तो कुछ नहीं तो कम से कम एक गिलास पानी देना चाहिए। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है, किसी के घर में जे पहले गिलास पानी देते हैं लोग। मुंबई में भी कुछ नहीं तो पहले पानी देना चाहिए, एक गिलास स्वच्छ पानी दीजिए कोई आगंतुक आया है तो, आ नहीं तो राहु का वहां प्रभाव आ जाता है, सब वर्णन है। पहले पानी दीजिए फिर बाद में उनको खाने का कुछ दीजिए। आ कुछ नहीं है तो बचने न किम दरिद्रता, वाणी में क्या दरिद्रता है, कुछ नहीं है तो बचन से उनका स्वागत करिए, उनका बचन से शरीर से प्रणाम करिए, अभिवादन करिए। तो माँ जसोदा इतना व्यस्त हो गई, कभी कभी गृहस्थ लोग अपने गृह कार्य में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि पूजा करना जप करना सब भूल जाते हैं। गृह कार्य नाना जंजाला, घर में इतना काम होता है खास करके गृहस्थ को कि वो भूल जाते हैं कभी कभी, भगवान को स्नान कराना, भगवान को वस्त्र पहनाना सब हो जाता है। तो भगवान भी देखे कि ये तो मुझे भूल गए सब लोग, इसलिए याद दिलाए। कभी कभी भगवान याद दिलाते हैं, कोई संकट प्रस्तुत कर देते हैं। कभी कभी व्यक्ति के घर में कोई आधी व्याधि कोई संकट आ जाता है तो लोग भगवान को याद करने लगते हैं। सब लोग संकट में भगवान को याद करते हैं ना, तो विपत्ति भी आती है तो हमारा सुधार करने के लिए। जैसे माँ जसोदा घर में संकट आ गया, उत्सव में विघ्न आ गया, गाड़ी ही धड़ाम से गिर गया, बहुत आवाज हुआ, सब सामान बिखर गया, तो बहुत व्यवधान आ गया। तो कुछ व्यवधान अगर आता है तो अभी भगवान की कृपा है। भगवान कभी कुछ भक्तों पर व्याधि देते हैं, कुछ संकट देते हैं तो उसका सुधार करने के लिए उसका मन फिर भगवान की ओर आ जाता है। संकट में लोग भगवान का याद करने लगते हैं कि हे प्रभु अब मुझे रक्षा कीजिए। तो गृहस्थ को या किसी के ऊपर कोई संकट आता है तो भी अच्छा है, तो संकट में भगवान का स्मरण होता है और सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। जब ज्यादा सुख संपत्ति आता है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुते होता है, तो आदमी भगवान से दूर होने लगता है। और संकट आता है तो हम भगवान को याद करते हैं। इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि विपत्ति ठीक है, वो विपत्ति संपदा से ठीक है जिसमें भगवान का स्मरण होता है। विपत्ति भगवान का स्मरण कराता है और सुख संपत्ति भगवान का विस्मरण करा देता है। इसलिए भगवान से भक्त लोग यही चाहते हैं कि हमेशा विपत्ति ही रहे। कुंती महाराज ने कहा कि हमेशा महाभारत का युद्ध चलता रहे, हमेशा द्रौपदी का चीरहरण होता रहे, हमें सुख नहीं चाहिए, महाभारत युद्ध हमेशा होते रहे। क्यों? कि महाभारत युद्ध होता रहेगा तो कृष्ण रहेंगे। माने कहा कि अब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया है तो आप जा रहे हैं, हमको छोड़ रहे हैं। माने कहा कि अच्छा है महाभारत युद्ध अनवरत चलता रहे कि आप हमारे साथ रहें। तो माँ जसोदा ने विपत्ति नहीं मांगा, विपत्ति के थ्रू उन्होंने कृष्ण को मांगा कि आज विपत्ति चली गई तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए विपत्ति रहे कि आप हमारा साथ देते रहें। एक बार हम अनुमोदन में कह रहे थे कि माँ कुंती माँ ने विपत्ति मांगा, तो महाराज कहे कि विपत्ति के द्वारा उन्होंने कृष्ण को मांगा कि कृष्ण रथ पर बैठ कर जा रहे थे, पांडवों को अब छोड़ रहे थे, अब दूर जा रहे थे, तो माँ ने सोचा कि तो महाभारत का युद्ध अभी चलते रहना चाहिए, कुछ न कुछ संकट आता रहेगा तो कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, तो वह विपत्ति ही ठीक है ना। इसलिए माँ जसोदा ने कहा कि विपदा संतु न शस्त्र तत्र छत्र जगत गुरु, हमें विपत्ति ही दीजिए क्योंकि आप विपत्ति में साथ देते हैं। तो भक्त के ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है तो मतलब भगवान के प्रति हमारा झुकाव बढ़ जाता है। विपत्तियों में हमारा जब भी अच्छा होने लगता है, कोई संकट आता है तो आदमी बहुत अच्छा से जप करता है, मन भगवान में केंद्रित रहता है। इसलिए जब गाड़ी छकड़ा टूट गया, सारा सामान गिर गया, बहुत जोर से आवाज हुआ, तो सबका ध्यान भगवान की ओर आ गया। सब लोग खाने पीने में उत्सव में व्यस्त थे, कृष्ण को कोई देख ही नहीं रहा था, जबकि कृष्ण को देखना है, कृष्ण को स्पर्श करना है, कृष्ण को उपहार देना है, लेकिन कोई नहीं देख रहा था, कोने में पड़े हुए थे। जब भगवान ने ऐसा छकड़ा को मारा तो सब लोग उधर आ गए, सब लोग देखने लगे, चुंबन करने लगे, आलिंगन करने लगे। तो भगवान यही चाहते थे कि सबका ध्यान हमारी तरफ हो, नहीं तो वही जो कहावत है कि जेकरे बिया हो करे खाना बरी, भोजपुरी में कहावत है ना, जिसका विवाह है उसी को खाना बरी मिल रहा है, जिसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है उत्थान उत्सव, और वही उपेक्षित किनारे कोने में बैठा है। इसलिए भगवान माँ यशोदा और ब्रजवासियों समेत सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिए कि मुझे देखो, मुझे देखना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए ना, भगवान को दान देना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी मेरी पूजा करो, मुझे उपहार दो, मुझे प्रणाम करो। तो बहुत सुंदर औथानिक सुख के मना मनस्विनी, यशोदा को यहाँ मनस्विनी कहा गया, महा उदार। माँ यशोदा बहुत उदार थी, वो दान देने में बहुत उदार थी, इसलिए ब्रजवासियों को वस्त्र देना, गो दान करना, आभूषण दान करना, ने बच्चे के उत्थान लीला में सब दान कर रही थी, उनको भोजन देना, पूजयति ब्रजौ कसह, और उनकी पूजा भी कर रही थी, मैंने उनका चरण धोना, उनको चरण वंदना करना। समागतान, आए हुए ब्रजौ कसह ब्रजवासियों को पूजयति, पूजा कर रही थी। तो इतना व्यस्त हो गई कि कृष्ण के तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था। तब भगवान ने रोना प्रारंभ किया, जोर जोर से रोना चालू किया और पैर ऊपर कर, बच्चे जब भूख लगती है तो रोना चालू करते हैं और पैर को ऊपर ऐसे करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी रोने चालू किए और पैर को उछालना, और पैर को उछालने में ही गाड़ी को मार दिए, धड़ाम से गिर। रुदन अस्तनार्थी, अस्तन आर्थी, दूध पीने की इच्छा से, रुदन अस्तन अर्थी, भगवान को अस्तन अर्थी कहा गया है, माने यशोदा के अस्तन को पान करना चाहते थे। चरण उदिक्षिपित, चरण को उछालने लगे, अस्तन अर्थी कृष्ण जो माता के अस्तन का दूध पीना चाह रहे थे। चरण उदिक्षिपित, क्रोध के मारे अपने दोनों पांव इधर उधर उछाल रहे थे, और इस तरह से जब गाड़ी गिर गई तो सब लोग आ गए, फिर माँ यशोदा उनको स्तन पान कराने लगी। तो कृष्ण जहाँ भी आते हैं, जहाँ भी कृष्ण रहते हैं, कृष्ण की विशेषता है कि सबका ध्यान कृष्ण की ओर रहता है। ब्रज में भगवान आए तो सारे लोग कृष्ण को देखने के लिए, चाहे गोचारण लीला हो, चाहे बाल लीला हो, चाहे गिरिराज धरण लीला हो, सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करके रखते थे। मुहावा लखत वहीं है, लाख लोग साथ है, लाखों लोग उनको जहां भी चलते हैं, लाखों लोग उनको देखने के लिए चलते रहते हैं। लिए वहां उपेक्षित देख करके भगवान ने ऐसा कौतुक किया कि सब लोग अब उनको देखने लगे, सब आदर देने लगे, करने लगे। माँ यशोदा भी उनको लेकर गोद में स्तन पान करने लगी। तो बहुत सुंदर लीला है, भगवान इसे भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपना हर कार्य में, हमें अपने कार्य में इतना व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि एकदम भूल जाइए कृष्ण को। गृहस्थ को भी अपने घर में कार्य में इतनी व्यस्तता होती है, गृह कार्य में अनेक जंजाल उपस्थित होते हैं, अनेक संकट आते हैं, इतना समय चला जाता है, कभी गृहस्थ को खाने को भी समय मिलता है, ऐसे गृहस्थ होते हैं कि इतना कार्य होता है, कभी कभी गृहस्थ खा भी नहीं पाते हैं, कार्य की इतनी व्यस्तता होती है। उसी तरह से व्यस्त कार्य में, अपने घर के व्यस्त कार्यक्रम में भी कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। ये भी एक उपदेश है, शिक्षा है। अपने घर के कार्यों में इतना मत व्यस्त हो जाओ, इतना मत उसमें रच पच जाओ कि बिल्कुल भूल जाओ कृष्ण को जानना, कृष्ण को पहचानना, कृष्ण को देखना। थोड़ा समय निकालना चाहिए, जब तक जिंदगी है फुर्सत न होगी काम से। मानो भगवान ने भी कहते हैं कि तुम्हें बहुत काम है, माँ यशोदा इतना मत भूल जाओ कि मुझे भी भूल जाओ। जब तक जिंदगी है फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, थोड़ा समय तो निकालो, मेरे तरफ भी तो देखो। सारे ब्रजवासी लोग, सब यशोदा समेत सब लोग, कृष्ण को कोई नहीं देख रहा था, उपेक्षित जैसा लग रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कौतुक रचा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। अब समय समाप्त हो गया है, इसलिए प्रश्न के लिए समय नहीं है। धन्यवाद।